किसी इंसान के पास जॉब नहीं है, अब वह घर में जाए नमाज पर बैठ के बस दुआ करता रहता है, अल्लाह जॉब दे दे, अल्लाह जॉब दे दे, क्या ये रवैया मुकम्मल है या इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, हम गलत नहीं कहेंगे, गलत नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। आपको जॉब चाहिए, आप अपना सीवी भेजिए, अब उसके बाद आप जायनमाज बिछा कर बैठ जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ऐसी जगह पर जॉब दे जहां पर मुझे फायदा हो दुनिया और आखिरत का। माओ को अक्सर परेशानी होती है कि उनके बच्चों के प्रपोजल और खासतौर पर बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, यही होता है ना, और फिर माएं क्या करती हैं, इसको कह रही हैं, उसको कह रही हैं, उसको कह रही हैं, ये क्या सही करती हैं या गलत कहती हैं? कहना इज पार्ट ऑफ योर दुनियावी एफर्ट, बिल्कुल कहिए, साथ साथ आपको दुआ भी करते रहना है। सो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, ये दोनों हिस्से आपको किसी भी दुनियावी काम पर अप्लाई करने हैं जो असाबे कहाफ से आपको और मुझे बताए जा रहे हैं कि जहां जहां आपको एफर्ट करनी है वहां एफर्ट कीजिए और उसके बाद मामला जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह की तरफ फिर रुजू कीजिए, यही दुनिया का मामला है। तो इन्होंने दुआ की और दुआ जो है वो मोमिन का सबसे बड़ा वेपन होती है। इन्होंने कहा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, अल्लाह हमारे जो ब्रोकन अफेयर्स हैं अल्लाह उनको मेंड कर दे। अल्लाह ताला ने इनके दुआ के ऊपर भी रिस्पॉन्ड किया। ये जो असाबे कहफ थे इनका जो बादशाह था वो इनके खिलाफ था, सही, और बादशाह से इस टायरेंट बादशाह से, जालिम बादशाह से, डीसीएस से बचने के लिए ये गए थे ना गार के अंदर, अल्लाह की पनाह में आए थे। जब दज्जाल जो है वो सब तरफ अपना फितना फैला रहा होगा तब मुसलमानों को किसकी पनाह की जरूरत होगी? अल्लाह की पनाह की जरूरत होगी। तो ये आयत नंबर 10 सूरह कहफ की असल में मुसलमानों को और असाबे कहफ को एक लाइन में लेके आ रही है, एक जैसा अमल आपका और असाबे कहफ का, तवक्कुल अल्लाह। आपको बताया था कि सूरह कहफ का वन लाइनर थीम क्या है, आप जब अल्लाह से मदद चाहेंगी, आप जब अल्लाह से प्रोटेक्शन चाहेंगी तो अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो असाबे कहफ वाले पैटर्न पर, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए आपको और मुझे भी इंसेंटिव दे दिया गया कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 10 आयात जो है ये पढ़ी जाए। आगे आयत नंबर 11 आ रही है। अब पहला स्टेप कहानी का था कि अल्लाह ने उनको गार में पना दी और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। दूसरा स्टेप कहानी का आयत नंबर 11, फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफ सिनीन अददा। फदरबना अला आदानिहिम, हम उर्दू में कहते हैं हमने उनके कानों के ऊपर थपक थपक कर उनको सुला दिया। अक्सर आप देखती हैं बच्चे, माएं जो हैं वो बच्चों को सुला रही होती हैं तो वो कानों के ऊपर हल्का हल्का यू यू टैप कर रही होती है। बाज माएं तो बहुत जोर जोर से करते हैं कि अगर आप उसी बेड पे बैठे हो जिस बेड पे बच्चा भी रखा हुआ है और अम्मा यू यू भी कर रही है तो आप वाइब्रेशन में होते हैं पूरे, सही, वो अच्छा तरीका नहीं है, वैसे वैसे मत कीजिएगा। फादर रब्बना अला आदानिहिम विस्ट्रक का बैरियर अपॉन द ईयर्स, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको एक गहरी नींद में सुला दिया। फिलकह फी सिनीना अदद, कई सालों तक हमने उनको थपक कर सुला दिया। फादर रबना अला आदानिहिम असल में अरबी का एक एक्सप्रेशन है, दाराबा का मतलब वैसे अरबी जुबान में होता है मारना, हमने उनके कानों पर मारा, ये मतलब नहीं है। फादर रबना अला आदानिहिम एक एक्सप्रेशन है और ये महावरतन बोला जाता है जब किसी को बहुत गहरी नींद में सुला दिया जाए। अरबी में जब कहा ये कहना हो कि फलां जो है वो बहुत गहरी नींद में सो गया, मैंने सुला दिया उसको अपने बच्चे को, तो फादा रबना अला आदानिहिम एक महावरा बोला जाता है। और हम जानते हैं कि महावरे को लिटरल ट्रांसलेशन में नहीं लाया जाता, जैसे आप कहती हैं उर्दू का महावरा के बहादुर शाह जफर ने लेट से दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहादुर शाह जफर दिल्ली गया, उसने एक ईंट पकड़ी फिर दूसरी ईंट पकड़ी फिर उन दोनों को बैंग किया फिर जितनी भी ईंटें थी उन सबको बैंग किया, इसका ये मतलब तो नहीं है ना। अब लिटरल मफहूम नहीं लेते महावरे का कभी भी, महावरा बोला जाता है एक फिगुरेटिव स्पीच के तौर पर कि जिससे एक एसेंस निकलता है। जब दिल्ली की ईंट से ईंट बजाने की बात हो रही है इसका मतलब क्या होगा कि उसने डिस्ट्रक्शन वहां पर फैलाई, सही। इसी तरह से फजरबना अला आदानिहिम एक फिगुरेटिव स्पीच है, एक अंदाज है बोलने का, एक मुहावरा है कि जब किसी को गहरी नींद सुला दिया जाता है तो ये अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह ने कहा कि हमने इनको गहरी नींद सुला दिया, यानी क्या मतलब था, जब इंसान की दो तरह की नींद होती है ना, एक आपकी गहरी नींद होती है और एक आपकी हल्की नींद होती है। जब आपकी हल्की नींद होती है तो आपको आसपास की आवाजें आ रही होती हैं, आती हैं, और जब आपकी गहरी नींद होती है, बास लोगों की नींद ऐसी होती है आप उनके पास खड़े होकर ढोल बजाते रहे उनको आवाज नहीं आती है, है ना। क्या असाबे कहफ सोते होंगे जो आजकल कुछ नौजवान सोते, कोई बात नहीं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, फिक्र नहीं करे, मुझे भी जब नींद आती है तो मैं बहुत गहरी नींद सोती हूँ, वरना जगाते रहे तो जगाते रहे आप मुझे। तो वो बताने का मतलब ये कि नींद आपकी दो फेजेस की होती है, एक आपकी हल्की नींद होती है जिसमें आपका आंखें बंद होती हैं बट आपका जहन थोड़ा जाग रहा होता है, उसमें आपको आसपास की आवाजें आ रही होती हैं। एक आपकी गहरी नींद होती है जिसमें आपको फिर आसपास की आवाज भी नहीं आती। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको गहरी नींद सुला दिया, उनके आसपास कौन बातें कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, उनको ये पता नहीं चल रहा था। बाज़ स्कॉलर्स का कहना यह है कि यहां पर एक फेल छुपा हुआ है, ये बनता है फदा रबना हिजाबन अला आदानिहिम, हमने उनके कानों के ऊपर एक हिजाब डाल दिया, एक पर्दा डाल दिया ताकि उनको बाहर की कोई आवाज ना आए। आजकल कुछ हेडफोन्स ऐसे आते हैं और हमारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि उनको वही हेडफोन दिलाए जाएं, जिससे आपके बाहर की सारी साउंड जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आज इंसान वो हेडफोन्स बना सकता है तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल बात है कि अल्लाह उनके कानों के लिए कोई ऐसा अनसीन हिजाब बना देता कि जिससे उनको आउटसाइड सोर्स की कोई आवाज ना आती। तो एक ओपिनियन ये है कि यहां पर एक लफ्ज हिजाबन का छुपा हुआ है, अल्लाह ने उनको सुला दिया और कितना अरसा सुला दिया, सिनीन अददा, मैनी ईयर्स के लिए आता है, सिनीन जमा है, सिनतुन आता है वाहिद, सिनीन जमा है, अल्लाह ने उनको कई सालों के लिए सुला दिया। जो आप में से अरबी पढ़ने वाले हैं उनके लिए सिनतुन वाहिद होता है और इसकी जमा दो तरह आती है, एक आती है इसकी, प्लीज मैं टेक्निकल हो रही हूं, बाकी जिनको ग्रामर नहीं आती परेशान ना हो, सिनवातुन आती है इसकी जमा सालिम और सिनीन इसकी आती है जमा मुकस्सर। तो आप में से जो ग्रामर के स्टूडेंट है आपको पता होगा जो दो तरह की जमा आती है, बाकी लोग भी सुन लें, आपको मैं आसान एग्जांपल से बताती हूं। आप अरबी में पढ़ती हैं काफिरुन, एक को कहते हैं या बहुत सारों को कहते हैं, काफिर एक को कहते हैं या बहुत सारे, काफिर एक होता है ना, अरबी में ही एक लफ्ज आता है काफिरून, सूरतुल काफिरून अम्मा पारा में सूरत आती है, काफिरून एक है या जमा है, जमा है। तो एक जमा है काफिरून, एक जमा आती है कुफार, कुफार भी तो जमा है, तो दो तरह की जमा हो गए ना, इसी को, इन्हीं दो तरह की जमा को कहते हैं जमा सालिम या जमा मुकस्सर। तो सिनीन जो है ये जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर जो है वो मोर देन टेन से आगे अप्लाई करते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने उनको कई सालों के लिए सुला दिया। अब ये जो सोए हैं, अब यहां पर एक चीज मैं भूल ना जाऊं, फिर मैं भूल जाऊं, एक यहां पर मेंशन करती हूं, ये जो हम आयत पढ़ रहे हैं आयत नंबर 11 पढ़ रहे हैं, सही, तो आपको बताया था कहानी का दूसरा पार्ट है कि पहला पार्ट था गार में गए और दुआ की, दूसरा पार्ट ये कि अल्लाह ने उनको सुला दिया। ये आयत नंबर 12 में क्या आएगा, अल्लाह ने उनको उठाया, 13 में ये आएगा कि अल्लाह ने ये कहानी बयान क्यों की है। और ये किस्सा जो आप सुन रही हैं पूरा, आपके जो पहले पेज पे हमने फहरिस्त दी है, जो हमने कहा था कि स्कॉलर्स सूरतुल कहफ को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हम कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, हम दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं, दूसरा हिस्सा आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 26 तक है, सही। तो कहानी तो मुकम्मल हो गई आयत नंबर 13 तक एक तरह से आउटलाइन में। अब ये जो आयत नंबर 14 से 26 है, इट्स अ ब्यूटीफुल नज़म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीस आयत, कि अल्लाह ताला ने इन्हीं चार को आगे इलैबोरेट किया है। जैसे आयत नंबर 10 में था कि गार में गए और दुआ की, इसी की तफसीर जो है वो आपको आगे मिलेगी आयत नंबर 12 से ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है नहीं, आयत नंबर 14 से 16 तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप जो है वो अल्लाह ताला उसकी तफसीर बयान करते जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरती आपको सूरह कहफ के नज़म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगी। आगे आयत नंबर 12 में अल्लाह ने फरमाया, आयत नंबर 12 में क्या किया था अल्लाह ताला ने, स्टेप नंबर 3 उठा दिया था, सुलाया था, पना दी और फिर सुलाया और फिर उठाया, दैट्स इट, बस ये कुरान की कहानी है जो अल्लाह ताला ने सिनॉप्सिस के तौर पर बयान कर दी। आयत नंबर 12 में फरमाया थुम्मा बअथनाहुम, फिर हमने क्या किया, हमने उनको उठाया। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया था फा जो हर्फ आता है वो किस लिए आता है, फौरन के लिए, थुम्मा भी हर्फ आता है और थुम्मा आता है जिसका तर्जुमा उर्दू में करते हैं फिर, थुम्मा आता है एक काम ऑर्डर में हो रहा है लेकिन उसमें डिले हो गया, फा में फौरन था, थुम्मा में ऑर्डर और डिले होता है, अबाखी और ताखीर होता है, एक काम ऑर्डर में हो रहा है लेकिन उसमें डिले हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया नुतफे से, और फिर इंसान जब डिलीवर होता है तो वो फम्मा की कैटेगरी में होगा, वो फयकून की कैटेगरी में नहीं हो सकता, वो 9 मंथ्स के पीरियड से गुजरता है। तो यहां ये फम्मा क्या बता रहा है, स्कॉलर्स कहते हैं ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ अरसे के बाद उठाया, और वो कुछ अरसा आगे की आयात में मजीद एक्सप्लेनेशन दे देगा। फम्मा बअथनाहुम, फिर हमने उनको जगाया, लीना अलमा, ताकि हम देखें या ताकि हम जान लें, अय्युल हिज़बैनी अहसा लिमा लबिसू अमदा, कि दो ग्रोहों में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत को सही सही काउंट कर सकता है, सही सही शुमार कर सकता है। यहां लफ्ज आया है बअथनाहुम, बअथना बअथा से है, और बअथा बादल मौत सुना है आपने, सुना है ना, बाआसा ज्यादातर रिसरक्शन के लिए आता है, मरने के बाद दोबारा उठने के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादातर ये लफ्ज इस तरह बोला जाता है। यहां पर ये जो लफ्ज आ रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको दोबारा उठाया, जैसे जहां जहां कुरान में लफ्ज आते हैं या मफहूम आता है कि अल्लाह क्यामत के वक्त मुर्दों को दोबारा उठाएंगे, जब सूर फूंका जाएगा और अल्लाह का हुक्म होगा और सारे मुर्दे अपने कब्रों से बाहर निकल आएंगे, तो वहां पर भी बाआसा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहां अल्लाह ताला ने बाआसा का लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब क्या है बताने का, कि दे वर वेरी क्लोज टू देयर डेथ। नींद में हम क्या होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली मर चुके थे, बिकॉज मुफसरीन का बहुत ही लॉजिकल जवाब है, वो कहते हैं अगर वो फिजिकली डेथ हो चुकी होती तो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, बट वो डीकम्पोज नहीं हुए इतने साल तक, वो दोबारा उठे, सो दे वर इन अ डीप स्लीप। लेकिन अल्लाह ने बाआसा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि दे वर वेरी क्लोज टू डेथ, और जब आप इस्लाम के एसेंस को समझते और पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बताती हैं कि एक हदीस में आपने मौत को नींद का भाई कहा, और एक हदीस में आपने मौत को नींद की बहन कहा। एक हदीस में अल्फाज आते हैं अन्नौमु अखुल मौत, नौम नींद, अखुल मौत मौत का भाई है, और फिर उसमें अल्फाज आते हैं वा अहलुल जन्नती ला यनामून, अहले जन्नत को कभी नींद नहीं आएगी। आपको पता है आप जन्नत में सोएंगे नहीं, आप कहें अच्छा जन्नत में नहीं सोएंगे तो यहां दुनिया में जितना सो सकती हूं सो जाऊं, तो जन्नत में हम सोएंगे क्यों नहीं, जरा वजह तो बताएं, दुनिया में हम सोते क्यों हैं, थकन से सोते हैं, तो जन्नत में तो कोई थकन ही नहीं होगी, सो इट्स अ फुल पार्टी टाइम, दिन रात पार्टी टाइम, बहुत शौक है ना हमारे बच्चों को रात में पार्टी करने का, स्लीप ओवर्स करने का, अम्मा कहें बेटा दिन गुजार के आ जाओ, नहीं स्लीप ओवर करने थे, भाई तुम रात में सोगी तो जाके, सोते थोड़ी है रात में फिर हम जब स्लीप ओवर्स करते हैं, तो आपको जो भी स्लीप ओवर्स कर ले आप जन्नत में खींचेगा, फुल फ्लेज पार्टी टाइम जन्नत। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत जन्नती जो होंगे अहलुल जन्नती ला यनामून, जन्नती जो हैं वो सोएंगे नहीं, और जब सोएंगे नहीं तो इसलिए जन्नतियों को मौत भी नहीं आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और ये सही हदीस है, इमाम सुयूती के मुताबिक सही हदीस है, मौजमुल औसत में आती है। मौत को नींद की बहन क्यों कहा जाता है, इसके लिए जो स्कॉलर्स कहते हैं वो कहते हैं कि इसलिए कि नींद और मौत में बहुत बहुत क्लोज सिमिलैरिटी है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है, ये आपको मालूम है, इस्लाम जो है ट्रेडिशंस हैं हमें यही बताते हैं, जब हम सोते हैं हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़ देती है, लेकिन इस वक्त रूह का छोड़ना और मौत के वक्त रूह का छोड़ना बहुत स्लाइटली सा फर्क इसमें होता है। जब नींद में जिस्म से रूह जिस्म को छोड़ती है तो एक स्ट्रैंड के साथ अटैच्ड रहती है, मुझे हमेशा ये बात सुन के ना वो काइट याद आती है, पतंग, आप पतंग को छोड़ते जाएं, छोड़ जितनी आपकी डोर लंबी होगी वो पतंग जो है वो जाती रहेगी, जितना आपका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, बाद लोग कहते हैं मैं ख्वाब में वहां पहुंच गई, वहां पहुंच गया, वहां चली गई, वो कर लिया, सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड कि आप क्या करते हैं और अल्लाह कितनी उसको गुंजाइश देता है। असल चीज क्या है कि मौत और नींद का फर्क यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारी रूह जब भी जिस्म को छोड़ती है लेकिन वो एक स्ट्रैंड के साथ जुड़ी रहती है, और जब अल्लाह हुक्म देता है तो फिर वो स्ट्रैंड काट दिया जाता है और वो मौत जो होती है वो फिर असल मौत होती है। मौत के वक्त में भी रूह को निकाला जाता है लेकिन उस स्ट्रैंड को काट दिया जाता है। आप देखें आज भी बहुत से इंसान उनका इंतकाल नींद में हो जाता है, बहुत से इंसानों का इंतकाल नींद में होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला का इज़्न होता है तो वो जब रूह जिस्म से निकलती है तो अल्लाह उस धागे को उस ट्रेंड को काट देता है, फिर वो वापस नहीं आते। सूरह ज़ुमर में इसका जिक्र भी आता है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में आता है अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, अल्लाह किसी भी नफ्स को मौत देता है, वफात देता है जब उसकी मौत का वक्त होता है, اس کی نیند کے اندر. فیوم سے کلتی قدا علیہ الموت, اور جس کی موت کا وقت نہیں ہوتا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, جس کا ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے. یعنی جب ہم اٹھتے ہیں تو اصل میں ہمیں ایک طرح سے نئی سی زندگی ملتی ہے. جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس زندگی کے اوپر جو اللہ نے ہمیں بخشی موت کے بعد. بعدما اماتنا, ہماری موت کے بعد اللہ نے ہمیں زندگی بخشی. تو یہاں پر بھی اصل میں جو لفظ بعثا آیا ہے یہ گہری نیند سلانے کے لیے آیا ہے. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا, یہ تو اٹھانے کے لیے آیا. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو گہری نیند سے اٹھایا. لینا علما, تاکہ ہم جان لیں. ایو الحزبین احصا لما لبثوا امدا, کہ دونوں پارٹیز میں سے کون اس غار میں رہنے کی مدت کو صحیح کاؤنٹ کر سکتا ہے. اچھا, اب یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ کون سی ہیں, اس کے بارے میں سکالرز کی مختلف رائے ہیں کہ دو پارٹیز یا دو گروہ جو آیا ہے وہ کیا ہے. حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب بھی گروہ کو کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. جماعت بھی گروہ کو کہتے ہیں. حزب آتا ہے اسپیسیفکلی ایسے گروہ کے لیے جو کہ ایک ایجنڈا رکھتا ہو, صحیح. حزب اللہ, اور قرآن میں آتا ہے حزب اللہ, اللہ کا گروہ. حزب الشیاطین, شیطانوں کے گروہ, صحیح. تو دونوں الفاظ آتے ہیں. حزب اللہ کا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہوتا ہے. حزب اللہ اسپیسیفکلی اپنی دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے. حزب الشیطان وہ جو ہر معاملے کو شیطان کے وسوسوں کی بیسس پر کرتے ہیں. تو حزب عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے گروہ کو جس کا کوئی پراپر ایجنڈا ہو. اللہ نے کہا یہاں پر کہ کون سا جو حزب ہے, ایو الحزبین, کون سا حزب جو ہے وہ صحیح شمار کرتا ہے. یہ جو یہاں لفظ آیا نا احصا, حمزہ ہا صاد اور پھر آگے یا کی شکل میں آپ کو ایک لیٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. حصا کہتے ہیں عربی زبان میں پیبلز کو. پیبلز ہوتے ہیں گارڈنز میں جو ہم رکھتے ہیں یا جو آپ کو سی وی سائٹ پر ملتے ہیں. حصا عربی زبان میں پیبلز کو کہتے ہیں. اور عرب کا یہ کلچر تھا کہ عرب کسی چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے پیبلز اپنے پاس رکھا کرتے تھے. وہ کاؤنٹ کر کے اس سے چیزوں کا شمار کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہاں پہ یہی لفظ استعمال کیا احصا, کہ کون سب سے اچھا کاؤنٹ کرتا ہے, کون سب سے بیسٹ کاؤنٹ کرتا ہے. جہاں تک دو گروہوں کی بات ہے, اس میں مختلف اوپینینز ہیں. ایک اوپینین اس میں یہ ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کے گروہ کی بات ہو سکتی ہے. یہ اوپینین یہ, جیسے وہ یہودیوں کے پاس گئے تھے نا قریش کے لوگ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا سوال کریں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ قریش یا یہ یہود کی بات ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اصحاب کہف ہی میں سے جو فتیاتن تھے انہی میں دو گروہ تھے. آگے آپ پڑھ لیں گی کہ ایک نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے ہم کتنا ٹائم سوئے ہوں گے. تو ایک اوپینین سکالرز کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اصحاب کہف ہی کے آپس میں جو لوگ ڈسکس کر رہے تھے نوجوان, انہی کے دو گروہوں کی بات ہو. اور ایک اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اصحاب کہف ڈسکور ہوئے تھے, جب وہ دوبارہ اللہ نے ان کو اٹھا دیا, ثم بعثناہم, جب اللہ نے ان کو اٹھایا اور وہ شہر میں گئے اور ایکسپوز ہو گئے, تو آپ کو معلوم ہے کہ شہر کے لوگوں میں دو گروہ بن گئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا تھا ان پر دیوار بنا دیتے ہیں, کچھ نے کہا تھا نہیں ان پر مسجد بنا دیتے ہیں, مونیومنٹ بنا دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ان دو گروہوں کی بات ہو. اور ایک رائے اسکالرس کی یہ کہ یہ ان جنرل قریش اور مسلمانوں کی گروہوں کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تین چار اوپینین ہیں اس اللہ کے کلام میں کہ یہ ایو الحزبین کون سا گروہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں قریش نے کوئز کرنے کی کوشش کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں چیلنج کر دیا اس آیت میں. اللہ نے ان کو اٹھایا, اور اللہ تم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہاں اللہ نے ان کو اٹھایا. لینا علما, تاکہ ہم جان لیں. ایو الحزبین احصا لما لبثوا امدا, کہ کون بتائے گا اب کہ وہ کتنی مدت تک اس غار میں رہے. تم ہمارے رسول کو کوئز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی اصحاب کہف کی اصل حقیقت تو تمہیں بھی نہیں پتا. آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر, ان کی اپنی ہسٹری کے اندر پیپل آف دا کیف کتنا ٹائم اس غار میں رہے, اس میں کوئی کنسنسز نہیں ہے. کوئی کہتا ہے 400 سال, کوئی کہتا ہے 350 سال, کوئی کہتا ہے 120 سال, کوئی کہتا ہے نہیں 375 ایئرس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر اللہ کے رسول ایگزیکٹ نمبر بتا بھی دیں گے تو تم کیسے ویریفائی کرو گے, تمہارے پاس تو کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے ایک چیلنج آیا ہے ان کے لیے کہ اصل حقیقت کون جانتا ہے. بس اللہ جانتا ہے. آگے آیت نمبر 13 آ رہی ہے. تو یہ تین سٹیپ ہو گئے, اللہ نے غار میں ان کو بھیجا, پروٹیکشن دی, اللہ نے ان کو سلا دیا, اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ سے اٹھایا. آیت نمبر 13 اصل میں اس کہانی کا مقصد بتا رہی ہے. نحنو نقص علیک نبأهم بالحق, نحنو ہم, نقص ہم بیان کر رہے ہیں, علیک آپ کے لیے, نبأهم بالحق ان کی کہانی بالکل حق کے ساتھ. آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے آیا تھا, انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, آیا تھا نا پیچھے, جیسے وہاں انا جعلنا آیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا ترجمہ کریں تو بنتا ہے انا, بے شک ہم, جعلنا ہم نے بنایا, اور وہ ایمفسس کے لیے تھا. بالکل یہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ہے, نحنو ہم نے, نقصو یا ہم, نحنو ہم, نقصو ہم بیان کرتے ہیں. تو یہ ایمفسس ہے کہ اللہ بتا سکتا ہے اصل حقیقت کیا ہے, اللہ بتا سکتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ جو تھے ان کے نمبر کیا تھے, ان کا ٹائم کیا تھا, ان کی تفصیل کیا تھی, ان کی ریئل ڈیٹیل کیا تھی. جو لوگ کہانی نیریٹ کرتے ہیں وہ حق نہیں ہو سکتی, جو اللہ کہانی نیریٹ کرتا ہے وہ حق ہے. اور یہ جو آیا ہے نبأهم بالحق, کہ ہم حق کے ساتھ ان کی کہانی کو بتائیں, اس میں تین چیزیں آتی ہیں. حق میں جب کسی کہانی کو حق کے ساتھ ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں. ایک اس میں آتی ہے ریالٹی, یہ کہانی سچی ہے, فوکلورز نہیں ہے, یہ بنی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں, سیلف کریٹڈ فیلسیز نہیں ہیں, یہ ریالٹی ہے, یہ کہانی حقیقتاً ہوئی ہے. دوسرا اس میں آتا ہے کہ حق کے ساتھ بتانے میں, کہ اللہ اس کو ایکوریٹلی بتائے گا, سٹیپ بائی سٹیپ بتائے گا. اور حق کے ساتھ بتانے میں تیسری چیز آتی ہے کہ اللہ کہانی فار دا سیک آف کہانی نہیں سنا رہا, اللہ کہانی مقصد کے لیے بتا رہا ہے. ہر سٹیپ پر پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے اس میں ایک عمل کے لیے کوئی نہ کوئی انڈیکیٹر موجود ہے. یہ چیز ہے جس کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اللہ ایڈیشن سبٹریکشن کے بغیر بتاتا ہے, اور اللہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بتاتا, اللہ ریئل پرپس کے لیے بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا کہ اللہ نے ان کو کس مقصد کے لیے جو تھا اس پروسیس سے گزارا. یہ ہے قرآن کا نظم جو آپ کے سامنے جو ہے بہترین طریقے سے آیا, کہ ان چار آیتوں میں کہانی پلس لیسن کہ کیوں بیان کی, اس کا مقصد ہے. اللہ نے کہا تھا کہ مقصد کو یاد رکھنا, اس کو بتایا گیا ہے. جو آیت نمبر 11 آئی آپ کے سامنے آئی, اس میں یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا, اور اب سلانے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فارمیٹ رکھا ہے اس آیت کے بعد, آیت نمبر 13 کے بعد, آیت نمبر 10 کی تفسیر آپ کو ملے گی آیت نمبر 14 سے 16 میں, آیت نمبر 11 کی تفسیر ایکسپلینیشن آپ کو ملے گی آیت نمبر 17 اور 18 میں, آیت نمبر 12 کی تفسیر آپ کو ملے گی 19 سے 21 میں, اور جو آیت نمبر 13 ہے نحنو نقص علیک نبأهم بالحق, اس کو اللہ تعالیٰ اور ڈیفائن کریں گے آیت نمبر 22 سے 26 میں. تو یہ قرآن کا آپ امیزنگ آرگنائزیشن سٹائل دیکھیں, کہ جس سیکوینس میں بلٹ پوائنٹس آئے اسی سیکوینس میں آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کی ایکسپلینیشن دے دیں گے. اور قرآن جب اتارا گیا ہے, نازل کیا گیا ہے, تو ریٹن ٹیبلٹس میں نہیں اتارا گیا, قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ اور میں نوٹس بھی بناتے ہیں نا, تو ہمارے نوٹس میں بھی اتنا نظم اور آرگنائزیشن نہیں ہوتی, اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کو اپنے دل میں اتاریں. جتنا یہ آپ کے دل میں اترے گا اتنی اللہ کی قدر جو ہے وہ آپ کے لیے بڑھتی جائے گی. تو اللہ نے آیت نمبر 13 میں فرمایا, نحنو نقص نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. ہم ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ. انہم فتیۃ, یہ چند نوجوان تھے, اور آپ کو بتا دیا فتیتن آتا ہے 10 سے کم کے نمبر کے لیے, فتیتن آتا ہے ٹین ایج اور 20s کے لیے. یہ وہ تھے, آمنو بربہم, یہ اپنے رب پر ایمان لائے. تو اللہ نے بھی کیا کیا, وزدناہم ہدن, ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. ہم پڑھتے ہیں نا, دیر از اے کاز اینڈ دین دیر از اے ریاکشن, کاز اینڈ افیکٹ ہم پڑھتے ہیں نا فزکس میں, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کاز اینڈ افیکٹ. اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کچھ کیا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ ریٹرن میں ان کے لیے کچھ نہ کرتا. جب انہوں نے ایمان لا کر اللہ کو رب مانا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیا. ہم احادیث میں کیا پڑھتے ہیں, آپ اللہ کی طرف ایک قدم آتے ہیں, اللہ آپ کی طرف 10 قدم آتا ہے. आप अल्लाह की तरफ चल कर आते हैं, अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आता है। तो सिर्फ काम क्या है कि मुझे अपना हिस्सा डालना है, पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा, पहली चीज, पहली सीढ़ी पे चढ़ने का कदम मुझे उठाना पड़ेगा। बास लोग इस बात पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने हमारे नसीब में जहन्नुम ही लिखी है तो फिर हमें हिदायत कैसे मिल सकती है। और ये आम तौर पर लोग कहते हैं कि जो ये कह रहा है उससे पूछें, क्या आपने अपने नामा अमाल की किताब देखी है, क्या आपने अपनी तकदीर लिखी हुई देखी है कि आपको जहन्नुम मिलेगी। कभी भी कोई इंसान इस अप्रोच के साथ जिंदगी ना गुजारे कि अल्लाह ने नहीं चाहा कि मुझे हिदायत दे। अल्लाह जब तक हिदायत का दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। हिदायत का दरवाजा दिल के अंदर से खुलता है। समथिंग हैज टू बी चेंज फर्स्ट इन योर हार्ट। तब्दीली अंदर से आती है तो बाहर मैनिफेस्ट करती है। जब मेरा दिल नहीं बदलेगा तो मेरा अमल भी नहीं बदल सकता। आर्टिफिशियली कोई अपने ऊपर ईमान को इम्पोज नहीं कर सकता। अल्लाह हिदायत का दरवाजा उसके लिए खोलता है जिसके दिल में अल्लाह से मिलने की और अल्लाह की मोहब्बत की तलब जो है वो पैदा हो जाती है। और जो अल्लाह के रास्ते में बढ़ता है अल्लाह उसके लिए अगला कदम जो है वो आसान कर देता है। आप हमेशा ये सुनती हैं ना कि आप अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो अल्लाह आपका अगला कदम और काम आसान कर देते हैं। क्यों क्यों आसान करता है? अभी आपको बताया हदीस का मफहूम कि आप अल्लाह की तरफ चल कर आती हैं तो अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आता है। और जिसके करीब जितना अल्लाह होगा उसके काम बनेंगे या संवरेंगे? उसके काम बनेंगे। इस ईमान के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ें कि अल्लाह आपके कामों को थामने वाला बन जाएगा। जो दीन के कामों में लग जाता है अल्लाह उसकी दुनिया बनाने में लग जाता है। यह हकीकत है। उमर बिन अब्दुल अजीज कहा करते थे कि जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह उसके मामला संवारने में लग जाता है। सिर्फ इसके लिए कन्विक्शन चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के बेहतरीन वक्त को, आप अपने बेहतरीन पोटेंशियल्स को, आप अपनी बेहतरीन जवानी के औकात को और सालों को अल्लाह के रास्ते में लगाने वाली बन जाएं। सिर्फ जरूरत इस बात की है। तो अल्लाह ने कहा कि वो ईमान लाए, आमनु बि रब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन, और हमने भी उनको हिदायत में बढ़ा दिया। इमाम बुखारी ने इसी आयत से एक दलील निकाली है और वो दलील ये निकाली है, वो कहते हैं कि इंसान का ईमान घटता और बढ़ता है, कम होता है और ज्यादा होता है। जैसे हम सब महसूस करते हैं जब हम यहां बैठे होते हैं या हम किसी भी कुरान की क्लास में बैठे होते हैं और जब हम कुरान सुन रहे होते हैं, अल्लाह का कलाम सुन रहे होते हैं, तो हमारे दिल में नेकी का जज्बा आ रहा होता है ना। हम कहते हैं अच्छा आज घर जाके जो है वो अम्मी की हेल्प करूंगी किचन में, आज इफ्तारी में हेल्प करूंगी, अच्छा आज मैं जाके सबको मुस्कुरा के देखूंगी, अच्छा आज मैं जाके मेट को जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सदका दे दूंगी, अच्छा आज मैं मोबाइल फोन, बच्चियां जो बैठी हैं यहाँ पे सारी, आज मैं मोबाइल फोन जो है वो ज्यादा अपने हाथ में नहीं रखूंगी, अम्मी से बैठ के बातें करूंगी, अब्बा से बातें करूंगी। ये कुरान की महफिल में नेकी का जज्बा आ रहा होता है। और जो सब बाकी हम बड़ी खवातीन है हमारे अंदर भी नेकी के जज्बात आ रहे होते हैं, लेकिन द मोमेंट यू स्टेप इन योर हाउस फिर क्या हो जाता है कि किसी नई दुनिया में चले जाते हैं, सब भूलने लग जाता है ना। ये होता है, ईमान घटता और बढ़ता है। इमाम बुखारी ने जो उसूल फिक में डिराइव किया है वो कहते हैं कि जो इंसान के ईमान की कैफियत है, अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान ज्यादा भी होता है ईमान कम भी होता है। कभी आपके ईमान के लिहाज से बहुत अच्छे दिन होते हैं, कभी आपके ईमान के लिहाज से बहुत लो डेज होते हैं। इट्स ओके। जब इंसान अल्लाह से जितना करीब होने की कोशिश करता है उसका ईमान बढ़ता जाता है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि एक जानी मोमिन नहीं हो सकता जबकि वो जिना करे, एक चोर मोमिन नहीं हो सकता जबकि वो चोरी करे। उसका ईमान चिड़िया की तरह या परिंदे की तरह उसके दिल में से निकल के उसके सर के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, और जब तक उसके दिल में वापस नहीं आता जब तक कि वो सच्ची तौबा नहीं करता, तौबा तो नसूहा नहीं करता। इसका मतलब क्या है? मुसलमान कबीरा गुनाह कर सकते हैं, इसका यही मतलब है ना। जिना क्या है? कबीरा गुनाह है। मुसलमान कबीरा गुनाह कर सकते हैं। आपके पास कोई इंसान आता है, कोई मुसलमान आता है और उससे कहता है कि मेरी जिंदगी में ये गुनाह हुए हैं, आप कहती हैं अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम, तुम तो इस्लाम के दायरे से बाहर, काफिर, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड जहन्नमी, ये करना है? नहीं। अल्लाह उसको ईमान में बढ़ाएगा। याद रखें ये इक्वेशन है कुरान की और इस्लाम की। आप उसको अल्लाह के साथ जोड़ें, आप उससे कहें अपने फेथ का रिवाइवल करो, آپ اسے کہیں اپنے ایمان کو تازہ کرو، آپ اسے کہیں اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی مانگو. جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کے ایمان کو بڑھا دے گا اور پھر وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدن، تو ہم نے ان کو ہدایت میں آگے بڑھا دیا. یہ چنک یہاں تک اس پورے واقعے کا ایک طرح سے مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے جو آگے آیت شروع ہوگی اس میں یہ تفسیر کے ساتھ آئے گا. اور الحمدللہ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ آلموسٹ سارا کا سارا جو ہیں وہ سن چکی ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تیزی سے گزر جائیں. اچھا ایک ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے، میرا ٹائم ہو گیا یا میری گھڑی کچھ آگے پیچھے ہو گیا؟ ایک ریکویسٹ یہ کرنے کہ کل یہاں پر انشاءاللہ ہبا جو میگزین ہے ان کا سٹال لگے گا، تو اگر آپ تھوڑا سا 5-10 منٹ اپنے ایکسٹرا ڈرائیورز کو بتا کے آ جائیں، اور اگر آپ وہاں کچھ جا کے اس سٹال پہ سروے کرنا چاہیں اور کچھ لینا چاہیں، سو یو پیپل آر موسٹ ویلکم. جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.